तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
हम सभी को या किसी को भी परिवर्तन हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन परिवर्तन हमारे अनुकूल हो वो हमेशा संभव नहीं होता। और बाबा ने तो पहले से ही हमें ये बता दिया है कि हमें किस प्रकार का परिवर्तन, जिसको बाबा संस्कार परिवर्तन कहते हैं, या पूरी दुनिया का ही परिवर्तन हमें करना है। तो आज का हमारा विषय है महसूसता की शक्ति द्वारा परिवर्तन, जिसको हाईलाइट करेंगे हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंगल जी। हम आपका इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागतम। हमारे ये सभी भाई बहन लुधियाना से और कुछ भाई बहन बहादुरगढ़ से आए हैं। आप सभी मोहन भाई को बहुत बार सुनते होंगे। आप जानते हैं जो हमारे विंग्स हैं उसमें साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, उसके आप चेयरपर्सन हैं, क्योंकि आपकी लौकिक शिक्षा भी इसी प्रकार से हुई। आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, ONGC में सेवाएं की, अपनी इच्छा अनुसार सेवाओं को छोड़कर बाबा की सेवाओं में अर्पित हो गए। यूं तो जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से बाबा के प्रति, बाबा की सेवाओं के प्रति समर्पित हैं। यंग एज में ही ज्ञान मिला और तब से ही सेवाओं का बहुत उमंग उत्साह रहा। बहुत शौक है आपको सेवा करने का, न केवल सेवा करने का लेकिन औरों को आगे बढ़ाने का, औरों को इंस्पायर करने का। मैं समझती हूँ आपने ऐसे अनेक कुमारों को प्रेरणा देके उनके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाया होगा। आप में बहुत सी कलाएं हैं, किस किस कला को वर्णन करूं? ऐसी कलाएं हैं जैसे बहुत सारे एग्जीबिशंस के बुक्स एग्जीबिशन उसका निर्माण करने में आपका बहुत योगदान रहा है। आप वर्तमान समय साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन होने के साथ साथ जो हमारी एकेडमी है ज्ञान सरोवर उसके आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं। अपनी विशेषताओं के कारण, अपने वक्तव्य के कारण और अपनी खूबियों के कारण, क्योंकि बाबा ने भी जिन जिसने जैसा जैसा शिक्षा लिया लौकिक में भी, बाबा ने उनकी सेवाओं को, उनकी शिक्षाओं को भी सेवाओं में यूज किया। तो आपने इसी के कारण आपने देश विदेश में जाके यूरोप, अमेरिका, रशिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज, ऐसे बहुत से देशों में जाके ऐसी सेवाएं प्रदान की हैं। आप स्वभाव से बहुत ही सरल हैं और जैसे कुछ लोग होते हैं डिफिकल्ट टू अप्रोच, लेकिन मोहन भाई इजी टू अप्रोच। मैं कहूंगी बहुत इजी से आप उनसे मिल सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो उनसे प्यार से स्नेह से बात करते हैं, उनको समय देते हैं। और इन्हीं विशेषताओं और सेवाओं के फलस्वरूप, क्योंकि साइंटिस्ट इंजीनियर्स प्रभाग के कई हमारे अभियान भी निकले और आपको भारत सरकार की तरफ से पर्यावरण श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजस्थान सरकार से भी आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भी कई पुरस्कार आपको मिले हैं। तो ऐसी विशेष हस्ती हैं आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेकर आपसे निवेदन करती हूँ कि आज के विषय को स्पष्ट करें, क्योंकि आपने साकार बाबा का भी अनुभव किया हुआ है। तो आप एक विशेष हस्ती हैं और अनुभवों से बहुत सी उपलब्धियां, बहुत से अनुभव आपको प्राप्त हैं। आज के विषय स्पष्ट करेंगे महसूसता की शक्ति से परिवर्तन।
ओम शांति। आज सुबह की मुरली तो सबने सुनी है। हम समझते हैं मुरली में बाबा ने आज का विषय बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, हमें कोई बहुत विशेष आवश्यकता उसकी नहीं रह जाती कि किस प्रकार से हमें आवश्यकता है महसूसता की और महसूसता की शक्ति से परिवर्तन की। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी हम बच्चों को विशेष क्या दिया, आज बाबा ने गॉडली गोल्डन गिफ्ट दी। कौन सी गिफ्ट थी? दिव्य बुद्धि की। कैसे पता चले कि हम सबके पास वो जो गिफ्ट दी है बाबा ने वो गोल्डन की है या सिल्वर की है, गिफ्ट तो गिफ्ट ही है, कॉपर की है, उसके अलावा तो हो नहीं सकती इस संगम युग में। तो पता कैसे चले कि वो गिफ्ट जो है हमें बाबा ने जो दी है हमारे पास इतनी वैल्यूएबल गिफ्ट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गिफ्ट देता है तो गिफ्ट में तो उसकी फिजिकल वैल्यू भी होती है, कीमत की भी, और सबसे बड़ी बात उसमें जो स्नेह प्यार समाया हुआ होता है और वो गिफ्ट संभाल के रखी जाती है स्नेह की यादगार। तो इसीलिए गिफ्ट का पता आज बाबा ने उसमें बताया किन विशेष बातों से पता चलता है, किन विशेष बातों से गिफ्ट की हमें पता चलती है। एक तो ये जो गॉडली गिफ्ट है ना, इससे हमें लिफ्ट मिलती है, कहा ना आज बाबा ने। तो कोई भी लिफ्ट होती है, किस लिए होती है विशेष करके लिफ्ट? कम मेहनत में हम अपने निर्धारित स्थल तक पहुंच जाएं, जो हमारी मंजिल है। तो इसीलिए बाबा ने जो गिफ्ट दी है वो गिफ्ट हमें लिफ्ट जो है वो हमें एकदम हमारे जो मनोवांछित फल है वहां तक ले जाने वाली है। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खोल भी दिया, गुफ्त भी गए, दरवाजा बंद भी कर दिया, क्या बाकी रह जाता है? हाँ, बटन दबाना, स्विच ऑन करना। तो कौन सा स्विच बताया बाबा ने? कौन सा? संकल्प का। संकल्प का तो है ही है, श्रेष्ठ संकल्प। और तो एक तो ये गिफ्ट है, श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर वो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। दूसरी बात बाबा ने क्या बताई, ये जो बुद्धि है लिफ्ट है, तो साथ साथ और क्या है? विमान भी है। विमान, जब ये विमान की बात आती है ना, तो हमें गुलजार दादी जी द्वारा बताया हुआ एक अनुभव याद आ जाता है। अक्सर करके दादी ने कई बार कई क्लासेस में बताया है, शायद आपने सुना भी होगा, फिर भी यहाँ पर उसके रिलेवेंस है। तो दादी एक बार कहीं सिंगापुर वगैरह गए हुए थे, काफी पहले, जब दादी की तबीयत अच्छी, कई वर्ष पहले की बात है, 20-25 साल पहले की होगी शायद। तो जब वहां से वापस आ रहे थे तो उसका जो, जिस विमान में थे उसकी जो एक एयर होस्टेस थी वो बीके के अच्छे परिचय में थी। तो दादी जी ने जब विमान बोर्ड किया आने के लिए, तो दादी जी के प्रति उसकी भी बहुत श्रद्धा थी। तो आओ दादी, आपको मैं विमान की ये जो है कॉकपिट वगैरह और सारा जो जहाँ पर उसका कंट्रोल पैनल्स रहते हैं मैं दिखाती हूँ। दादी जी को ले गई तो देखा, आजकल तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स संचालित ऑटो प्लेन्स होते हैं ज्यादातर करके। तो देखा तो बस बहुत सारे स्विच थे, हाँ 50 स्विच, और कहीं लाल बत्ती जल रही थी, कहीं पीली, कहीं हरी, ऐसे ऐसे अलग अलग इंडिकेटर थे। तो वो बताने लगी, दादी ये है उड़ने का, ये है इस चीज का, आदि आदि। तो दादी ने कहा, अरे ये तो बहुत माइंड बॉगलिंग है, बहुत ही ज्यादा। और फिर दादी ने कहा, देखो बाबा ने ना, दादी तो शुरू से खुद ही रही हैं संदेशी, तो दादी ने, बाबा ने मुझे जब शुरू में, जब संदेश में बहुत चीज दिखाते थे तो एक प्लेन दिखाया था, और बस उस प्लेन में चलो बच्ची उड़ो, हाँ जाओ। तो बाबा कैसे उड़ेंगे? नहीं बच्ची बहुत आसान है, जाओ जाओ अंदर जाओ। गए तो क्या बताया उन्होंने, उसमें सिर्फ 2 स्विच थे। गुलजार दादी ने तो बस, और वो दो स्विच का, एक ऊपर जाने का ऑन करो और दूसरा जब ऊपर से नीचे आना हो उसे दबा दो, वो नीचे आ जाएगा अपने आप। इतना सिंपल वो प्लेन था। और सब वहां तो आज भी बाबा ने बताया एक्सीडेंट प्रूफ होता है सब कुछ, तो वो सब बता के दादी ने कहा कि इतना ये सब संकल्पों पर आधारित होता है। और आज बाबा ने क्या बताया है उसके लिए, ये जो अलौकिक विमान है वो क्यों एक्यूरेट और बहुत अच्छा एक्सीडेंट फ्री बहुत निर्धारित चलता है। कैसे चलता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल है, एनर्जी है, बहुत रिफाइंड है। कौन सी एनर्जी है? डबल रिफाइंड तो है ही है। यहाँ पर भी ना देखो, जो वो ऑयल, मैं तो एक ऐसी कंपनी में सर्विस की है ONGC में, इंजीनियरिंग पास करने के बाद, तो बड़ा क्रूड ऑयल सा निकलता है, काला काला सा, देखा भी नहीं जाता। फिर उसे जब रिफाइन किया जाता है थोड़ा बहुत, बहुत जो क्रूड होता है वो केरोसिन ऑयल होता है जलाने के काम, कुछ थोड़ा होता है वो जमीन में ही, जैसे केरोसिन ऑयल होता है ना, केरोसिन ऑयल वगैरह, फिर मोटर कार स्कूटर का ऑयल, फिर और होता है जो सबसे रिफाइन होता है, किसका होता है? प्लेन से भी रिफाइंड, और जो रॉकेट वगैरह और जो होते हैं बहुत रिफाइंड, इसीलिए उसकी गति बहुत तीव्र होती है, कुछ सेकंड में ही कई किलोमीटर। तो इस रीति से रिफाइंडनेस, हमारे संकल्पों की भी जितनी रिफाइंडनेस होती है तो उतनी ही हमारी प्रगति की गति भी बहुत फास्ट होती है। तो आज का जो विषय है ना, तो उसको भी बाबा ने इसी में लिया हुआ है। तो ये संकल्प जब जितने रिफाइन होते जाते हैं, तो हम लोग ज्ञान में तो सभी चलते हैं, यहाँ पर सब बैठे हैं, सभी अलग अलग आध्यात्मिक आयु के हैं, कोई 5 वर्ष, कोई 10, 20, 50, हो सकता है कोई 70-80 साल के भी पुराने हो ज्ञान में। तो इस कारण से जब इसके अंदर, जब ज्ञान में चलते चलते कई बार ऐसी स्थिति आती है, अनुभव होता है कि हम चल तो रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्लास भी है, अमृत वेला भी है, सेवा भी है, धारणाएं भी है, लेकिन बाबा जो बताते हैं उस मंजिल तक पहुंचना, क्या उस हिसाब से हमारी गति है? तो सोचते हैं तो कई बार हम लोगों को लगता है और भी हम आगे बढ़े, लेकिन कई कारणों से, जैसे बहन जी बता रहे थे, उतना तीव्र गति से हम परिवर्तन नहीं कर पाते। तो आज जो है उसके लिए क्या आवश्यकता है, तो समय प्रति समय, सबसे पहले जैसे हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, 8 शक्तियां तो हम सब ने सुनी है और सब चित्रों में भी दिखाते हैं, और उन शक्तियों से हम शूद्र से ब्राह्मण तक तो बन जाते हैं, और ब्राह्मण में हम यूज भी करते हैं, लेकिन अब हमें जो ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है, उसके लिए जो 8 और सूक्ष्म शक्तियों की आवश्यकता है, और 8 और 8 16 शक्तियां संपन्न जब हम बन जाएंगे, तो उसमें ये पहली शक्ति की आवश्यकता है, महसूसता की शक्ति, जो आज का विषय है। और जब तक हमें ये महसूसता नहीं होगी अंदर की कि हाँ अभी मुझे और आगे बढ़ना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अगर हमें साधारण यही रहा कि हाँ ठीक चल रहा हूँ, सब ठीक है, तो वैसे ही हम चलते रहेंगे। लेकिन महसूसता की शक्ति जो बाबा ने बताया है, ये वर्तमान समय सबसे आवश्यक शक्ति है, पावर ऑफ रियलाइजेशन। बाबा ने इसमें भी 2 प्रकार का बताया है महसूसता, याद है? बाबा ने बताया, एक है दिखावे की महसूसता, कि जैसे हम नॉर्मली बोल देते कोई हुआ टक्कर लग गई थोड़ा, हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए सॉरी, या ऐसा बोल के चले जाते हैं, तो वो जैसे कन्वेंशनल हो गया, अंदर से आपको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं। एक है दिखावे की महसूसता और दूसरी है दिल की महसूसता। तो इसीलिए बाबा चाहता है जहां हमें अपनी वीकनेस का कोई रियलाइजेशन हो तो उसके अंदर हम पहले डीपली अंदर जाएं और देखें कि इस कमी के ऊपर या इस विकार को जीतने का पुरुषार्थ तो मैं पहले दिन से ही कर रहा हूं जब से ज्ञान में मैं आत्मा आई हूं, लेकिन अभी तक भी ये बीच बीच में विकार जैसे कि उछल खाता है, थोड़ा भी निकल आता है, क्रोध का हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कोई भी मोटे मोटे विकार तो हम लोगों ने जीत लिए, काम क्रोध लोभ मोह जैसे काफी हद तक, और उसका ओपनली डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन ये जो अंदर के ये सूक्ष्म है, ये उनके परिवार जो हैं, ये जो बीच बीच में उछल खाते हैं, तो ये वास्तव में इस जन्म का संस्कार नहीं है। जैसे हम कह देते हैं ना पिछले 63 जन्मों के संस्कार द्वापर युग से, तो इस जन्म के पुराने संस्कारों पर तो हमने काफी हद तक विजय पा ली है, जो ये अंतिम 84वां जन्म का या 63वां द्वापर के बाद, लेकिन इससे पहले के जो 62 जन्म हैं, उनके अंदर जो संस्कार, उनके जो संस्कार भरे हुए हैं, वो प्रत्यक्ष इतने नहीं है, वो हमारी सब कॉन्शियस माइंड के अंदर है। कॉन्शियस माइंड के संस्कार तो हमें फट से दिख जाते हैं, पता चल जाता है ये संस्कार हमारा इस जन्म का है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के जो संस्कार हैं, उसके अंदर जो है, जिसे हम सूक्ष्म रीति से वृत्ति बोल देते हैं, तो इसलिए ये महसूसता की शक्ति, ये रियलाइजेशन, ये बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि बीच बीच में कभी सप्ताह में एक बार कभी भी एकांत कुछ निकालें, बाहर के एकांत के साथ अंदर का एकांत, बाहर हम आधा घंटा एक घंटे के लिए हम बैठ जाएं और फिर हम अंदर का एनालिसिस करें, उसका जो हमारे साथ पूरा सप्ताह में पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसका ऑडिट करें, चेकिंग करें, और फिर देखें कि किस जगह मैंने अपना टेम्पर लूज किया है, किस जगह है कोई बात हुई है जो हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, उसकी रियलाइजेशन महसूसता करके फिर बाबा को सम्मुख लिख करके वो दे दें। लिखने से क्या होता है, लिखे वो किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, लिखे और फिर बस बाबा के पास जाके एकांत में या बाबा कमरे में उसको रखे, बाद में चाहे हम उसे फाड़ दें उठा के, लेकिन लिख देते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड से निकल के वो कॉन्शियस माइंड में आ जाती है और उस बात के रिपीट होने के जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। नहीं तो सब कॉन्शियस माइंड में अंदर ही विकर्म हुआ या कोई बात हुई उसको अंदर ही अंदर हमने अगर सॉरी कर दिया, उसका कोई इतना कॉग्निशंस नहीं है, उसका मतलब इतना लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब साकार में बाबा के सामने, इसीलिए बाबा कहता है, कल परसों ही मुरली में आया था ना, बाबा कहता है लिख करके दे दो तो उसमें क्या हो जाएगा, कम से कम कौन से 63 जन्मों के नहीं, एक इस अंतिम जन्म का ही जो विकर्म है वो आधा माफ, फिर भी 62 जन्म के तो रह गए ना, वो तो सब कॉन्शियस माइंड में घुसे हुए हैं, तो एक का भी हुआ वो ज्यादा डेंजर है एक का, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में है, बाकी सब कॉन्शियस माइंड में होने की वजह से। तो ये है महसूसता की शक्ति, अंदर का रियलाइजेशन। तो दिल की महसूसता होगी तो उससे फायदा यही होगा, वो दिलाराम का जो है दिल जीतने में मदद करेगी। दिलाराम बाप जो है, जैसे बाहर कभी कोई ऑपरेशन करना होता है ना, कोई बात निकालनी होती है, अंदर कोई ग्रोथ है, अंदर कोई कैंसरस है, कोई भी प्रकार का ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, वहां की वो महसूसता की शक्ति को ही खत्म कर देते हैं डॉक्टर लोग। उसके बाद काटेंगे, खून भी निकलेगा, कुछ चेंज करेंगे सब कुछ, लेकिन उसको महसूस ही नहीं होगा। ऐसे कई बार ना ऐसे माया भी हमारी महसूसता को खत्म कर देती है, और बहुत कुछ होता है हमारा लेकिन हम महसूस ही नहीं करते कि मेरा इतना लॉस हो रहा है, जन्म जन्मांतर का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए वो जैसे एनेस्थीसिया लाभ के लिए करते हैं कोई भी वो, तो हम अपने को ऐसे ही करें कि हमारे अंदर है। बाबा भी चाहता है, बड़े जो होते हैं बड़ों से इशारे भी दिलवाए जाते हैं, बाबा मुरली में भी इशारा देता है, ध्यान रहता है तो तुरंत ही अपना पॉइंट हम एकदम पकड़ लेते हैं। हाँ, भले कहे ना कहे ये पॉइंट बाबा ने मेरे लिए कहा है, लेकिन इतने तक ही बस सीमित रहता है। उस पर हम वर्कआउट करें, उस पर रहे तो नहीं। तो एक है ये एनेस्थीसिया जो है ना, जो बड़े लोगों से इशारा मिलता है, मुरली से इशारा मिलता है, एकांत में बाबा टचिंग कराता है, इन सब का, तो उससे हम जो है हमारे अंदर जो अनवांटेड ग्रोथ हो गई है, पर निंदा, पर चिंतन है, कोई भी बात है, तो उसको हम लोग समझते हैं ये हमारी मैच्योरिटी है, लेकिन नहीं, उन सब चीजें हम लोगों को काफी हद तक नीचे ले आती है। तो इसका पता कैसे चलेगा कि अगर महसूसता की शक्ति वास्तव में है तो ये जन्म देती है दूसरी शक्ति को, परिवर्तन की शक्ति। तो आठ शक्तियां तो वो हो गई, तो नौवीं शक्ति है महसूसता की शक्ति, ये सूक्ष्म, और फिर दसवीं है परिवर्तन की शक्ति। क्योंकि रियल महसूसता होगी तो परिवर्तन जरूर होगा, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब मैंने दिल से महसूस नहीं किया है, दिखावे की महसूसता है, और वो महसूसता के कारण मुझे परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दसवीं शक्ति है परिवर्तन शक्ति। तो ये परिवर्तन शक्ति क्या है? तो ये परिवर्तन शक्ति जो है, ये पहली यही जो अर्जुन की बात है ना कि मुझे परिवर्तन होना है, दूसरा हो ना हो, दूसरे के ऊपर कई बार हम लोग निर्भर हो जाते हैं, देखो वो ऐसा है, वो 25 साल पुराना है, मैं तो 10 साल पुरानी हूँ सिर्फ, उसके अंदर अगर ये विकार है, कमी है, कमजोरी है, मेरे अंदर तो हुआ तो क्या हुआ, मेरे भी निकल जाएगा, कब ठीक हो जाएगा। तो परिवर्तन शक्ति में ये है, एक तो ये परिवर्तन होना, किस बात का परिवर्तन? सबसे पहले बाबा हमारे स्मृति का परिवर्तन कराता है, स्मृति का परिवर्तन ही बाबा ने कराया, स्मृति का, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारा पिता कौन है? शिव बाबा। तो ये बेसिक चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं, स्मृति का परिवर्तन होता जाता है। तो स्मृति से क्या होता है, ये स्मृति हमारे एक जो 63वां जन्म है इसके लिए लाभदायक होती है, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे जीवन परिवर्तन के लिए आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक क्या है, स्मृति से हमारा वृत्ति का परिवर्तन होता है। जो पिछले 62 जन्मों के अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में घुसे संस्कार हैं, उनको परिवर्तन में ये लाती है। वो हमें भी नहीं मालूम होता सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन कभी कभी एकाएक ही ना कोई सबकॉन्शियस माइंड का, कोई किसी भी जन्म का संस्कार का, वो एकदम ऐसे निकल के आ जाता है, अरे ये तो मेरे मन चित में भी नहीं था, ये कैसे हो गया। लेकिन वो हमारे आत्मा में ही किसी जन्म का घुसा हुआ संस्कार है। तो स्मृति के परिवर्तन से साथ साथ वृत्ति का परिवर्तन होता है। तो इसीलिए वृत्ति का पता नहीं चलेगा सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन जितना हम ऑटो सजेशन देके चलते रहेंगे ना, जो योग में भी करते हैं, शुरुआत भी योग की, मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, सूक्ष्म वतन ले जाते हैं अपने को, बुद्धि को और ऊपर ले जाते हैं, ओ बाबा, बाप दादा की महसूसता होती है, बाबा की शक्ति को खींचते हैं, दूसरों को दान करते हैं, वो सारा का सारे जितने प्रोसीजर्स हैं, वो वृत्ति के अंदर जब घुसते जाते हैं तो आत्मा बलशाली, शक्तिशाली हो जाती है। और फिर इससे क्या होता है, ये सूक्ष्म चीज है, तीसरी चीज से स्थूल मेजरिंग चीज शुरू होती है। कोई भी चीज का मेजरमेंट होता है तभी तो पता चलता है, बुखार है, शरीर है, टूट रहा है, दर्द हो रहा है, पता नहीं चलेगा जब थर्मामीटर लगाएंगे, पता चलेगा अरे ये तो 102 फीवर है, 103 है। ऐसे ही कोई और शरीर में ये होगा बहुत रेस्टलेसनेस, तो पता चलेगा बीपी नापेंगे, भाई बीपी तो एबनॉर्मल है, इतना हाई है या इतना लो है। तो इसीलिए तीसरी चीज कुछ मेजरिंग हमारे पास होनी चाहिए ना, मेजरमेंट से हमें पता चलता है। तो स्मृति के बाद वृत्ति और उसके बाद दृष्टि, जिसे बाबा हमेशा बताते हैं क्या, सिविल आई के रूप में बाबा हमेशा कहते हैं। ये दृष्टि जो है ये हमारी इतनी सूक्ष्म रीति से परिवर्तित हो जाए, बस कोई भी प्रकार का इसमें क्रिमिनलनेस ना रहे। वो कैसे होगा, इसीलिए क्योंकि हमारा अंतिम पेपर भी जो है ना, वो कौन सा है, सबका सार जो पेपर के हमें सामना करना पड़ेगा वो है साक्षी दृष्टा का, जो अंतिम चारों तरफ भूचाल होंगे, अर्थक्वेक होंगे, फ्लड आएगा, ये प्राकृतिक आपदाएं एक तरफ होंगी, दूसरी तरफ बाबा कहते हैं मृत्यु का बाजार जो गर्म होगा, एटॉमिक वेपन, सिविल वार होंगे चारों तरफ आदि आदि। तो इसमें साक्षी दृष्टा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारी अवस्था को विचलित करेगी। इसीलिए बाबा ने जो लास्ट पेपर कहा है वो कहा है, अति हलचल में अति अचल, ये है लास्ट पेपर में पास होने के लिए युक्ति। अति हलचल होगी चारों तरफ, लेकिन उसमें हम अति अचल रहे। तो ये कब रहेंगे, जब इसका पहला, क्योंकि आंखों से देखेंगे वही हलचल में आएगा, जो मन के अंदर होगा वो हलचल में ले आएगा। तो इसीलिए साक्षी दृष्टा कैसे होंगे, उसके लिए मुख्य चार पांच बातें बुद्धि में रखने की। दृष्टा कहते हैं ना, दृष्टि नहीं कहते, देखो साक्षी दृष्टा की जब बात होती है तो आत्मा जो है वो है दृष्टा, देखने वाली, और ये दूसरी चीज है दृष्टि, ये आंख। तो आंख तो खिड़की है, इनर्ट है, इनएक्टिव है, ये तो विंडो है, जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की अपने आप नहीं देखती, खिड़की के द्वारा दूसरा देखता है। तो आत्मा देख रही है, दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा देख रही है। तीसरी बात क्या देख रही है, बाहर के दृश्य देख रही है, दृष्टा दृष्टि और दृश्य। कोई भी दृश्य देखते हैं, दृश्य तो आएगा चला जाएगा, ट्रेन में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, प्लेन में, बस एक दृश्य आता है, हाँ अच्छा है बुरा है, जो देखा वो सेकंड में पास हो गया, दूसरा दृश्य आ गया। कहीं भी दृश्य में अटके नहीं, वो है साक्षी दृष्टा। जब हम अटक जाते हैं, चाहे भले अच्छा हो, उसमें भी अटक गए तो क्या होगा, ट्रेन तो समय तो आगे गुजरता जाएगा और हम वहीं की वहीं रह गए, तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दृश्य को हम इस रीति से देखें कि ये परिवर्तनशील है, अच्छा बुरा मेरे लिए लाभदायक हानिकारक, तो ये दृश्य। तो दृष्टा दृष्टि और दृश्य। चौथी बात है दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से, किस एटीट्यूड से हम कोई दृश्य को देख रहे हैं। कहते भी हैं लौकिक में दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया में एक बात कह देते हैं कि देर इज नथिंग गुड और बैड, बट इट डिपेंड्स हाउ वी सी इट। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, किस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस बात को, वो उस चीज को अच्छा या बुरा बनाती है। तो ये चौथी बात है दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, पॉजिटिविटी। हमारे जीवन में इतनी पॉजिटिविटी हो जाए कि अगर नेगेटिविटी की भी कोई बात देखने में आए ना, उसको हम पॉजिटिविटी के दृष्टिकोण से ले लें। बस और पॉजिटिविटी के दृष्टिकोण से जितना लेते जाएंगे उस बात को, तो वो हानिकारक भी होगी, नेगेटिव भी होगी, वो भी अल्टीमेटली पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है, लेकिन संकल्प ही हमें अगर नेगेटिविटी की तरफ ले गए, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, क्या मेरे साथ ही जिंदगी में ऐसा ही है, आदि आदि, तो वो नेगेटिविटी जो है ना, वो रिजल्ट को भी नेगेटिविटी में ले आएगी। हमारे संकल्प बहुत महान है, साधारण नहीं है, ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसा हमारा संकल्प चलेगा और चलाते हैं हम, अरे माय थॉट्स मूव द माउंटेन्स, नक्षत्रों को भी चलाते हैं, ये ग्रहों को चलाते हैं। ये भी कहा गया है बाहर का जैसा ब्रह्मांड है वो हमारे आंतरिक ब्रह्मांड का ही रिफ्लेक्शन है, जो हमारे अंदर चलता है वो ही बाहर चलता है। तो ये दृष्टिकोण। और पांचवा चीज है, जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, दृश्य देखेंगे, वैसा ही हमारा इतिहास में दृष्टांत लिखा जाएगा। हिस्ट्री, जितने भी बड़े बड़े भक्ति मार्ग में महान आत्माओं के वर्णन है, साधु संतराम है, तुकाराम है, कोई मीरा है, नारद, जिन जिन के वर्णन है, हमारे आपके ही वर्णन है। और वो बस संकल्प किया, वो संकल्प एकदम सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए साक्षी दृष्टा, तो ये हम अभ्यास करते चले, अभी से ही हम अंतिम पेपर का अभ्यास करते चले। बहन जी बता रही थी साकार बाबा का, तो मुझे साकार बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला, बहुत मैं भाग्यशाली समझता हूँ। और 62 में ज्ञान में आए, 62 से 69 तक अनेकों बार, पहले तो साल में 3-4 बार यूं ही मिल जाते थे, बाबा भी बाहर जाते थे और वो, लेकिन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम इसलिए अपने को समझते हैं कि इंजीनियरिंग पास करने के बाद मेरा बहुत दूर आसाम में अपॉइंटमेंट हुआ, जब 67 में, जब वहां कोई भी सेंटर नहीं था, एक भी गीता पाठशाला नहीं थी, एक भी कोई भी भाई बहन नहीं था पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो जब वहां जाने की बात आई, हमने बाबा को पूछा, ब्रह्मा बाबा, तब तो बाबा सभी में चीजों में गाइड करते थे कि बाबा वहां जाने की बात हो रही है, लेकिन मेरे हाथ में ये 3 अपॉइंटमेंट हैं, एक हैदराबाद का था, एक दिल्ली का और एक आसाम का, और वो हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से लास्ट में था आसाम का, और दिल्ली में हैदराबाद में हमारे बाबा के केंद्र थे, इसीलिए हम समझते थे कि वो ज्यादा उपयुक्त है हमारे लिए। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ये तुम्हें ड्रामा अनुसार बाबा भेज रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर बाबा के बहुत भोले भाले बच्चे हैं, अभी तक उन्हें संदेश नहीं मिला है, बस जाओ और बाबा काम कराएगा अपना। तो हमने कहा, बाबा वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर तो इतना दूर जाना, 1000 मील तक कोई सेंटर ही नहीं, नियरेस्ट सेंटर भी कलकत्ता, वो भी इतना दूर आबू से, और वहां पर तो कैसे होगा, तब तो इतना ज्ञान सेवा के ये सब साधन भी नहीं थे। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाबा करा रहा है और बाबा तुम्हें बस काम पूरा होगा समय पर बुला लेगा। ये बाबा के मां वाक्य थे। तो खैर, बाबा ने कहा था और भगवान कह रहा है, उसमें तो सफलता समाई हुई है। तो बस वहां गए और थोड़े समय में ही, बाबा तो हर हफ्ते पत्र लिखता था, सप्ताह में एवरी वीक बाबा का पत्र आ जाता था, बच्चे ये करो, ऐसे सेवा करो, हम भी लिखा करते थे और उस रीति से वहां पर होता था। तो मैं जो बता रहा था कि 67 में वहां गए, बहुत थोड़े समय में ही वहां क्लास और सब कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि ये बाबा की ही कमाल थी। और बाबा कहता है ना, जब मैं देखता हूँ कि समझाने वाला उतना अनुभवी नहीं है और अच्छा नहीं है, लेकिन समझने वाले बहुत अच्छे आते हैं, तो बाबा क्या करता है, प्रवेश करके भी बाबा समझाता है, मुरली चलाता है। कितनी बार ऐसा अनुभव किया और उसके अनुभव का परिणाम ये निकलता था कि वहां पर बस समझा रहे हैं और सुनते सुनते सुनने वाले ध्यान में चले जाते थे। साक्षात्कार का पार्ट वहां जैसे यज्ञ के आदि में शुरू में देखा, ऐसे बहुत और ज्यादातर कन्याओं का माताओं का ध्यान का पार्ट। तो आप समझते हो भक्ति मार्ग में तो ध्यान का बहुत ही महत्व तो होता है, अल्टीमेट समझते हैं। तो इससे बहुत जल्दी ही क्लास उस जमाने में वहां पर लगभग 100-125 की क्लास ऐसे आत्माओं की शुरू। तो ये मैं इस संदर्भ में बता रहा हूं कि उसके बाद 69 में मेरा आना हुआ मधुबन। मैंने बाबा को लिखा कि बाबा हम देहरादून से गए थे कि वहां पर बहन जी कह रहे हैं म्यूजियम बनाना है, आप थोड़ा छुट्टी लेके आ जाओ और इसमें गाइड करो। तो वहां जा रहे हैं तो बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ वहां जाओ लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत आओ, फ्लाइट से आओ। 69 की बात है, जनवरी की। तो हम पहुंच गए और 17 जनवरी की सुबह यहां पहुंच गए 69 में। तो 17 और 18 जनवरी दो दिन यहां पर बाबा की अंतिम अव्यक्त स्थिति देखने का मौका मिला, कर्मातीत अवस्था का। उसको मैं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि हम सभी का भी लक्ष्य यही है, कर्मातीत बनने का। तो एक उसमें ये देखा, पहले तो जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा को बताते थे बाबा ये सेवा है, ये करें कैसे करें, तो बाबा गाइड करते थे, सारा बताते थे, ऐसे करो बच्चे ये होगा ये। लेकिन उन दो दिनों में जब भी हम ये सोच के जाते थे बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा से पूछेंगे, तो बाबा के सम्मुख गए, बाबा ऐसे दृष्टि देते थे और दृष्टि देके बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक भी अक्षर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमारा प्रश्न भी क्या है क्या पूछने के लिए आए हैं वो भी बाबा बता देते थे और उसका समाधान भी दे देते थे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, दो दिन में लगभग 6-7 बार बाबा से मिले। हर बार ऐसा अनुभव होता था, चाहे सेवा की बात हो, चाहे उसके पुरुषार्थ की बात हो, कोई भी बात हो, जैसा प्रश्न अंदर जो संकल्प होता था, ये है अंतिम कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण, मन जीते जगत जीत। जिसने अपना मन जीत लिया वो दूसरे के मन के भावों को भी परख सकता है और उसका समाधान जगत जीत, मन जीते जगत जीत, ये लक्षण। एक ये अनुभव किया। और क्या अनुभव किया? दूसरी बात, जो बाबा को तो पहले ही आभास हो गया था एक दो दिन पहले से ही कि बस जो अंत में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके आत्माएं जाएंगी, जैसे ब्रह्मा बाबा गए तो उनको बहुत क्लियर आभास होगा कि बस अब इस शरीर में मेरे ये अंतिम कुछ घंटे हैं, कुछ समय है। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई काम बचा हुआ भी है, पेंडिंग वर्क भी है, तो वो फटाफट निपटा लिए जाएंगे। और उन दो दिनों में भी बाबा ने, हमने देखा, वैसे तो 2-3 साल से हम देख रहे थे 67 के बाद से ही कि बाबा चारों तरफ से समेटते जा रहे थे, लेकिन इन दो दिन में देखा कि बस 18 जनवरी को बाबा ने अमृत वेले योग कराया, सुबह क्लास में भी बाबा आए लेकिन कोई भी मुरली नहीं चलाई, उस दिन बाबा ने सिर्फ सबको योग कराया। और बाद में आते ही यीशु दादी से कहा बच्ची आज जितने भी पत्रों के जवाब लिखाने हो लिखा लो, क्योंकि पहले तो बाबा पत्र लिखा करते थे, पत्र आते थे, पत्रों के जवाब पत्र के रूप में ही देते थे। तो ये पेंडिंग काम था, बाबा ने पहले ही लिखा दिया, क्योंकि मन में जब बिल्कुल धारणा हो जाएगी, स्पष्टीकरण कि हाँ अब, क्योंकि अगर कोई पेंडिंग काम होगा बुद्धि अंत में वहां चली जाएगी तो अंत मते सो गति तो होगी नहीं। अंत में ये याद होगा मुझे ये पत्र लिखना था, इस बच्चे का पत्र आया, ये काम बाकी रह गया, ये काम। तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कर्म, कोई भी हमें अंत में खींचे ना। अगर उसने हमें खींच लिया तो अंतमते सोगते वहीं पर ही फिर जन्म लेके उस कार्य को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी काम हमारा पेंडिंग ना रह जाइए, हम सबको सीख लेना चाहिए। जो ब्रह्मा बाबा जैसी आत्मा भी धीरे धीरे समेटते समेटते एक ये काम पेंडिंग था वो बाबा ने पूरा किया यशोदादी के साथ। तीसरा काम, नक्की लेक के पास जो बिल्डिंग है जहाँ म्यूजियम है हमारा, उन दिनों में हम लोगों ने पहली बार प्रदर्शनी करी थी वो किराए पर लेकर के, और सबने बोला बाबा वहां से सब वो देखने सनसेट पॉइंट वगैरह जाते हैं, बहुत भीड़ होती है और वो प्रदर्शनी उस मकान को हमें ले लेना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे पास ना इतने साधन थे ना कोई इतनी कोई संपत्ति थी मकान वगैरह ले ले, तो वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ था कई दिनों से। लेकिन फिर उसी दिन ही बाबा ने दोपहर को उस फाइल पर साइन करके कहा कि अच्छा इसको सेवा के साधन के रूप में ले लिया जाए और वहां चित्र प्रदर्शनी, पहले तो म्यूजियम का नाम नहीं होता था, तो वो पेंडिंग काम बाबा ने वो कंप्लीट कर दिया। चौथा काम, रोज क्लास होती है शाम को, रात को 9:15 बजे लगभग 9 बजे से क्लास शुरू होती है, बाबा के टाइम से ये चला आ रहा है। लेकिन उस दिन बाबा ने लगभग शाम को 6:30 बजे ही एक जमुना प्रसाद भाई है उन्हें बुला के कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सब बच्चों को बता दो आज भोजन करके बच्चे आ जाए। ये खास बाबा का इंस्ट्रक्शन था, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 1 घंटे का मार्जिन था, 6 बजे बाबा ने बोला और बस पहले 1 घंटा रखा रहता था वो करके उन्होंने करा और हो गया। सब बच्चे आ गए, बाबा भी आ गए 7 बजे और बाबा ने फिर वो क्लास कराई। तो देखो इतनी आयु थी 93 इयर्स, कई बार बाबा को खांसी भी आती थी एकदम जनवरी ठंडी का मौसम, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी न गला साफ करने की जरूरत पड़ी न खांसी आई। और वो इस बात का प्रतीक है कर्मातीत अवस्था का कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो कोई भी भोग भोगना जो होगी शरीर की, क्योंकि ये अंतिम पेपर है शरीर का, आत्मा का ये अंत तक का साथी है, तो जो भी भोगना होगी वो शरीर के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होगी। तो इस कारण से शरीर के द्वारा कोई भी भोगना होगी ना, वो अंत में हमारे योग बल के कारण वो महसूसता नहीं कराएगी, वो हमारे संपूर्ण बनने में रुकावट नहीं डाल सकती। इसीलिए बाबा का ना बस उस दिन एक बार भी ना बाबा को खांसी आई ना कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, उससे ये हुआ कि हाँ ये बिल्कुल बाबा ने सारा मुरली चलाया और हम भी सामने बैठे हुए थे मुरली सुन रहे थे आनंद ले रहे थे। एकाएक ही हमारे मन में संकल्प उठा, देखो ये प्राइवेट बात है जो बताते हैं आपसे शेयर करते हैं, कि बाबा कुछ बोले, इतना दूर आसाम से आए हैं कुछ हमारे लिए और बोले बाबा। तो बस देखो भक्ति मार्ग में भी जो कहते हैं कि भक्त के मन में इच्छा हुई और भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा बस वरदान मांगो, वरदान जो भी भक्त ने सोचा मांगा और भगवान क्या बोलते हैं तथास्तु, और भक्त की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। ये सब हमारे आपके ही भक्ति मार्ग के गायन है और ये संगम में ही महसूस करने की बात है। अभी भी बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के कमरे में जाके सच्चे दिल से कोई भी बात होती है बाबा से वार्तालाप करते हैं, भट्टी में भी यहाँ आपको बताया जाता होगा पत्र लिखो इस रूप में पत्र लिखो बाबा के, वहां जाओ दिल हल्का हो जाता है एकदम। तो वहां पर भी जाके कहो तो वहां तो प्रत्यक्ष में सामने ही बाबा मुरली चला रहे थे, बाबा अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में थे। तो जैसे ही संकल्प हुआ बाबा तक पहुंचा होगा और बाबा ने तुरंत ही नाम लेकर के महावाक्य उच्चार दिए। वो आज तक भी 18 जनवरी की रात्रि क्लास जो कि पेन ड्राइव के रूप में या सीडी के रूप में भी मिलती है ये ओम शांति भवन में जहाँ ऑडियो वीडियो रूम है वहां से भी ले सकते हैं। और वो अंतिम मुरली में बाबा ने सारी मुरलियों का पूरा सार जैसे बता गया है। 18 जनवरी की रात्रि क्लास में बच्चे, क्योंकि बाबा जानता था बच्चों के सामने कौन कौन से पेपर आने वाले हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा, उस पर पूरी मुरली है। अंदम पर चिंतन पर निंदा, क्योंकि स्थूल पेपर तो हम सब जीत लेते हैं ब्राह्मण, लेकिन जो ये सूक्ष्म पेपर हैं ये हमारे काफी समय तक चलते हैं, जो हमारे कर्मातीत अवस्था में बाधक भी हो जाते। तो बाबा ने वो सारी मुरली चलाई है, तो वो आप मुरली चाहो तो जब भी ले सकते हो और देख सकते हो। तो 18 जनवरी को बाबा ने ये कहा, सब बच्चों ने मुरली सुनी, उसके बाद बाबा मुरली चला के बाहर आए, दृष्टि दी सबको। बार बार बाबा की दृष्टि कुमारका दादी की तरफ, प्रकाशमणि दादी जी की तरफ, वो भी सबसे आगे वाली लाइन में मुरली सुन रहे थे, उधर आके रुक जाती थी, और बाबा ज्यादा दृष्टि कुमारका दादी को देते थे, क्योंकि बाबा को मालूम था मेरे बाद अभी ये संभालने वाली है। तो वहीं से ही बाबा ने शक्ति, और एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी, और वो सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ, क्योंकि इतना दूर आसाम से आ गए और बाबा के सम्मुख बैठे हुए थे। तो बाबा बार बार दृष्टि देते थे और वो दृष्टि से हम भी शक्ति प्राप्त करते रहे। और बाबा ने अंत में बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये पहली बार ही बाबा ने कहा। और बाबा कमरे के अंदर चले गए, और फिर तो कैसे बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए और अपनी सारी विल, सूक्ष्म शक्तियों की विल दादी जी को करते हुए विदा ली। कुछ जब उसके बाद जब भोग लगता था, तो 13 दिन तक भोग लगा, तो बच्चों ने प्रश्न पूछा, संदेशी जाती थी, बाबा अंतिम दिन आपकी कैसी स्थिति थी जब आप शरीर छोड़ रहे थे, वो बताओ। तो चौथे या पांचवें दिन का भोग का संदेश में बाबा ने बताया, बच्ची बस बहुत युद्ध चल रही थी अंदर, कर्म भोग की और योग बल की। एक तरफ बहुत तेज दर्द था, क्योंकि हार्ट अटैक जैसे कोई ना कोई कारण तो निमित्त बनेगा, और देखो अंतिम समय तक 93 इयर्स की आयु, बाबा अंतिम समय तक अपना पार्ट बजा के बच्चों की सेवा करके सारा दिन भर एक घंटे भी बाबा बेड रिडन नहीं हुए। नहीं तो कई बार कोई भी शरीर की व्याधि होती है, घंटों दिनों महीनों तक भी पड़े रहना, लेकिन बाबा अंत समय तक, इसीलिए बाबा कई बार साकार मुरली में कहते हैं, कोई न कोई कारण तो निमित्त बनेगा ही शरीर छोड़ने का, तो हार्ट फेलियर ये सबसे अच्छा कारण है। तो वही बाबा ने बताया, बच्ची बहुत तेज दर्द हो रहा था हार्ट में एक तरफ, और दूसरी तरफ योग बल भी अपना कार्य कर रहा था। तो पहले ये दर्द का बहुत ज्यादा भारी था, लेकिन धीरे धीरे ये हल्का होता गया और योग बल भारी होता चला गया, और बस अंत में आत्मा जैसे मक्खन से बाल की तरह वो खिंचके चली आए। तो हमें भी ये देखना है कि अंत में भी जब व्याधि तो होगी जब शरीर छोड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा स्थूल चीज न हो जो अंत में याद आए, कोई व्यक्ति वस्तु है वो कुछ नहीं, बाबा को याद। बाबा से बच्चों ने पूछा, बाबा आपको और क्या स्मृति थी, बस कि बच्चे कुछ नहीं, एक थी बस मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, अब मेरा इस शरीर का पार्ट पूरा हुआ, बाबा मुझे बुला रहा है, मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूँ। तो कोई भी बात अगर होती जो पेंडिंग काम थे, इसीलिए कोई विल करनी हो, कोई भी ऐसा काम पड़ा हुआ हो घर का जो अंत में लाइकली आपकी बुद्धि को खींच सकता है, अनफिनिश्ड टास्क, उसको खत्म कर लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि बुलावे का तो किसी को मालूम नहीं रहता। तो इस तरह उसके बाद बाबा गए और बाबा वो चले गए। तो बाबा ने कई बार बताया है जब अंत समय में ये होगा, तो ये परिवर्तन की शक्ति, ये भी परिवर्तन है, स्मृति वृत्ति दृष्टि, और फिर उसके बाद दृष्टि का परिवर्तन जब हो जाता है जो पांच बात बताई, फिर कृति का परिवर्तन कर्मों का, वो तो हमारा सबका ये सब स्थूल है, कृति फिर प्रवृत्ति और अंत में सृष्टि का। लेकिन तीन जो मुख्य सूक्ष्म चीज है, स्मृति वृत्ति और दृष्टि, ये हम ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है बहुत, क्योंकि बात के तीन के परिवर्तन तो हम लोग लगभग सभी कर चुके हैं। कृति का, कर्मों का परिवर्तन हो चुका है, कोई अशुद्ध ब्राह्मणों का कर्म, खान पान, रहन सहन कुछ नहीं है, प्रवृत्ति हमारी शुद्ध हो गई है और इसी तरह हमारा सारा वातावरण। लेकिन ये जो पहले की तीन चीज है सूक्ष्म, ये बहुत आवश्यक है। तो ये है परिवर्तन की शक्ति, और ये परिवर्तन की शक्ति से ही अंत में हम आपदा को खेल के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ये बाबा के लिए आपदा थी, इमरजेंसी थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन बाबा ने इसे भी खेल के रूप में परिवर्तन कर दिया। हम सबको भी आपदा को लौकिक को अलौकिक में जैसे हमने परिवर्तन कर दिया, ऐसे इस आपदा को खेल के रूप में परिवर्तन कर दे। ये है परिवर्तन शक्ति। तो इसीलिए परिवर्तन शक्ति में भी हम चेक करते चलें, एक एक सूक्ष्म चीजों का परिवर्तन, स्मृति का, वृत्ति, दृष्टि आदि का कितना परिवर्तन हुआ है। देखो भक्ति मार्ग में भी परिवर्तन मेजर कब आया? सूरदास, तुलसीदास, भरतहरि, कवि राजा भरतहरि, कोई भी वर्णन ले लो। सूरदास बहुत कृष्ण के भक्त के और वो थे, लेकिन वो ये महसूस करते थे कि ये आंखें जो है ना, ये देखती हैं और मेरी काम की दृष्टि, क्रोध, लोभ, मोह आदि दृष्टि जाती है। उसने तो अपनी आंख फोड़ ली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने महसूस किया कि ये आंख का दोष नहीं था। किसका दोष था? मन का दोष था, क्योंकि आंख अभी नहीं देख पाती, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मन में विचार अभी भी मेरे काम के, क्रोध के, स्त्री के, परगमन के, ये सारे विचार आ रहे हैं। तो इसीलिए दोष उसका था। तो बाबा ने ये क्लियर बात बताई, ये दोष ये अब चश्मे का ही दोष नहीं है। अगर धुंधला दिखता है चश्मा ठीक है या नहीं वो चेक करा ले, लेकिन असली बात तो आंख की है। आंख के साथ ये चश्मे को, ये तो दृष्टि जो है हमारी, वो स्थूल चीज है। तो दो जब ये हो जाती हैं, इसी तरह तुलसीदास का सब जानते हैं, उसने भी जब ना सांप को रस्सी समझ के, वो गया, लेकिन जब उसको ये रियलाइजेशन कराया गया तो उसे ये परिवर्तन हुआ। तो ये दूसरा है। इसके बाद इसके लिए परिवर्तन शक्ति का भी आधार क्या है? एक है, वो है मनन शक्ति। रोज बाबा मुरली में तो इतनी इतनी बातें बोलता है, लेकिन मुरली को सुन के हम उसको मनन भी करें। जैसे बड़ी पावरफुल चीज हम खाते चले, शक्तिदायक चीज, लेकिन पाचन शक्ति हमारी अगर कमजोर है तो शक्ति नहीं बनेगी। तो शरीर के लिए जो पाचन शक्ति की आवश्यकता है, ऐसे बुद्धि और मन के लिए, आत्मा के लिए मनन शक्ति। तो इसीलिए बाबा कहता है कुछ ना कुछ मनन, चिंतन, और उसके लिए बाबा ने विधि भी बताई है। अगर मनन के लिए बुद्धि नहीं चलती है तो क्या करो? इनिशियल स्टेज बाबा ने बताई है, अपने बड़े बड़े चित्र है उनके सामने जाके बैठ जाओ, मानो कल्प वृक्ष के सामने बैठ गए। उसमें इमेजिन करो कि देखो मैं जड़ में बैठी हुई आत्मा हूँ, बाबा मम्मा और जो 8-10 बैठे हुए हैं उनके सामने मैं भी बैठी हुई हूँ। मैंने तो देखा अभी बहुत जगह अपने भाई बहनों ने भी अपना चित्र काट के वहां लगा दिया, और रोज देखते हैं, नशा और खुशी चढ़ती है। और कभी भी ना वो अगर बात होती है कि कोई भी कमजोरी की बात संकल्प में भी आ जाते हैं तो अपना वो चित्र मर्जरे, मैं कल्प वृक्ष के मूल में बैठी हुई आत्मा हूँ, मेरे आधार पर तो ये सृष्टि है, मेरे में ये कमजोरी कैसे आ सकती है? बस बिल्कुल नहीं आ सकती। और वो समझ करके उस पर सहजी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो मनन चिंतन ये तो एक बेसिक है, इसका बहुत है, लेकिन आज उसका वो नहीं करते हैं। फिर और इसके साथ क्या शक्ति है? साथ ही साथ शक्ति में कौन कौन सी शक्ति का जो करा है, महसूसता के बाद परिवर्तन शक्ति, मनन, और इसके साथ साथ एक शक्ति और जो बहुत आवश्यक है, वो है एकाग्रता की शक्ति। ये एकाग्रता की शक्ति हम सब ने बचपन में वो लेंस का खेल किया है ना, सूरज के सामने लेंस रखते हैं तो किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो कागज या कपड़ा जो कुछ चीज नीचे होती है जल जाती है। अब गर्मी वही है लेकिन वो कंसंट्रेशन होके एक जगह होती है, तो ऐसी एकाग्रता की आवश्यकता है। ये एकाग्रता, यही बाबा ने कहा ये संकल्प लिफ्ट है और ये अलौकिक विमान है, जो अलौकिक विमान बटन दबाया और कहीं का कहीं ले जाता है, लेकिन उसका आधार क्या है? वेरी हाई स्पीड जो है फ्यूल, यानी कि जो जितना डबल रिफाइंड फ्यूल होगा, ट्रिपल रिफाइंड होगा, उसके आधार पर वो रॉकेट, हमारा बुद्धि रूपी रॉकेट उतना ऊंचा जाएगा। एकाग्रता की शक्ति का तो अपना बहुत बहुत बड़ा महत्व है, और जितना हमारा ये शक्ति होती जाती है ना, तो क्या होता है, बाबा कहते हैं उतना बच्चे मेरे निकट आते जाते हैं, और वो शक्ति का, पांचवी शक्ति का आधार है सत्यता की शक्ति। ये सत्यता, ये सूक्ष्म सच्चे दिल पर साहब राज, जितना जितना हम अंदर बाहर साफ होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी। बाबा ये महात्मा गांधी ने भी कहा था, मेरा जीवन ही एक खुली किताब है, यही मेरा संदेश है। तो हम ब्राह्मणों का जीवन भी ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे बाबा मामा का जीवन था। ब्राह्मणों को ये ना कह सके ये बाहर से ऐसे हैं लेकिन अंदर से ही ऐसे। अक्सर करके हम उसे चतुरता समझ लेते हैं कि भाई ऐसे चला इस संसार में, नहीं तो कैसे चलेंगे, लेकिन हमारा जो अंदर की जो है वो हमारे बोलने से पहले हमारे वायुमंडल में, हमारे ऑरा से, हमारे जो लाइट का ताज है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम बाबा के साथ जितने सत्य रहते हैं तो उसकी पहचान यही है, सच्चे दिल पर साहब राजी, और सच तो बिठो नच बाबा कहता है ना, तो वो खुशी में नाचता रहेगा, इसीलिए वो आत्मा सदा ही संतुष्ट रहेगी। बाबा भी एक का उदाहरण देते थे, एक बेंगलोर में भाई था, अंगना भाई करके, बस हमने तो खुद देखा उसके कई साल तक हमेशा ही खुशी में नाचता रहता था, यहाँ तक कि उसके यंग सन की भी डेथ हुई। ऐसे ऐसे उसके सामने पेपर आए, सारा संसार दुनिया तो रही है, लेकिन वो बिल्कुल शांत और उस स्थिति में रहा, तभी बाबा ने उसको जैसे ये वरदान दे दिया। जब परिस्थिति आती है तो हमारी स्वस्थिति ऐसी हो वो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। बाबा के सामने ना खांसी रूपी परिस्थिति आती थी, बस कभी कभी बाबा की आंखें भी गीले हो जाते थे, मुरली सुनाते सुनाते हम लोगों को लगता था सुनते, अरे बाबा को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो परिस्थिति बड़ी भयंकर आई खांसी के रूप में, लेकिन बाबा थोड़ी देर में ही ना वो कह, देखो बच्चे अभी ये पुराने तत्व है, पुराना शरीर है और इतना खांसी आती है। बाबा के पास ही वो चित्र रखा रहता था ट्रांसलाइट का, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, अरे बच्चे कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, ऐसा पवित्र तन मिलेगा और वहां पर कोई भी व्याधि नहीं होगी। बस बच्चों को भी खुशी में ऐसे सदा नाचना चाहिए, क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए, और ऐसा करके बाबा जैसे बताते थे ना, और बस फिर खांसी कहां गई, इतनी भयंकर परिस्थिति आई, लेकिन बाबा ने स्वस्थिति को इतना महान कर लिया कि वो परिस्थिति छोटी हो गई, स्वस्थिति बड़ी हो गई, और वो स्वस्थिति ने परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये हमें बाबा की कर्मातीत अवस्था से ये भी सीखना है, अंत में जो बाबा ने कहा और ये करके दिखाया, तो एक ये आवश्यकता है। और हमारे वो तो परिवर्तन हो ही रहे हैं, संस्कार परिवर्तन, उसके लिए तो ज्ञान योग हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन अंतिम बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जब बाबा ने ये शरीर छोड़ा 18 जनवरी की अर्ली नाइट को, वो शरीर 18 की पूरी रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद 1-2 बजे उसका संस्कार किया गया। लगभग 65 घंटे तक रखा रहा शरीर, लेकिन हम साक्षी हैं, हम तो यहीं पर थे, ना कोई इंजेक्शन दिया गया, पहले ऐसे कोई इंजेक्शन वगैरह होते थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ना कोई केमिकल लेप लगाया गया, कुछ नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, ना शरीर में कोई दुर्गंध आई, ना शरीर बहुत स्टिफ हुआ। सबसे ब्यूटी तो यह है कि 21 तारीख को जब हम लोग कमरे से बाबा को स्नान करके तैयार करके और यहाँ तक शांति स्तंभ जहाँ वर्तमान समय है यहीं पर ही बाबा का संस्कार किया गया, जब यहाँ लाए ना तो काफी हद तक बाबा के शरीर में काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी थी जो नॉर्मल केस में कभी नहीं हो सकती, सब डॉक्टर वो बोलते हैं, लेकिन ये है बाबा का प्रकृति। ये नहीं कि पूरा 100% कोई थी, नहीं, स्टिफ था, होता है, प्रकृति के अपने नियम है, लेकिन जो योग बल का था तो प्रकृति के ऊपर, जो बाबा कहता है ना प्रकृति पर भी विजय है, 5 तत्वों पर भी विजय है, बाबा ने इतना तत्वों को भी पवित्र पावन कर लिया था योग बल से कि अंत समय तक उन्होंने भी इसका साथ दिया। और जब बाबा का यहाँ पर लाके वो सब संस्कार किया गया, उसके बाद जब पहली बार भी अव्यक्त बाप दादा की प्रवेशता हुई, वो तो सारा मुरलियों में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो कम से कम पहले 69 की शुरू की एक दो मुरलियों में वो सारा बाबा ने पूरा स्पष्ट किया है। तो ये परिवर्तन भी बाबा का अंत तक चलता रहा, पेंडिंग काम बाबा निपटाते रहे, लेकिन अंत में भी जो 5-7 पेंडिंग काम बचे हुए थे अंतिम दिन तक बाबा ने कह कह करके वो निपटाए और अंत में बाबा बस उन सब से मुक्त होकर के उड़ गए। तो ब्यूटी यही है कि हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन हमने भी अगर साधारण आत्माओं की तरह शरीर छोड़ दिया और वो आए भाई अर्थक्वेक हुआ, ये बिल्डिंग गिरी, फ्लड आया, उसमें हम भी बह गए और शरीर छोड़ दिया, तो हम में और दुनिया वालों में फर्क क्या रहा? ये होना चाहिए कि हम अपनी इच्छा से, हाँ बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा को पूरी अनुभूति हो गई थी, अंत समय तक हम भी ऐसे हो जाएं, बाबा हाँ अब मेरा भी इस शरीर में पार्ट पूरा हुआ और क्लियर आभास हो जाए ये चीज पेंडिंग पड़ी है, अधूरा काम पड़ा है, वो हमारा पहले से ही कंप्लीटेड हो, जिससे अंत समय बुद्धि वहां न अटके, वो न खींचे, उन्होंने अगर खींच लिया तो अंत मते सोगति तो होगी नहीं। इसीलिए आवश्यकता ये महसूसता की शक्ति से हम शुरू करें, परिवर्तन की शक्ति से होते हुए और एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति और सत्यता की शक्ति, और इन सब में एक दो शक्ति और विशेष है, क्षमा की शक्ति। क्योंकि क्या है, हम सब कुछ ज्ञान में करते चलते हैं, लेकिन जब अपने किसी पुराने को देखते हैं, देखो इसके द्वारा मेरे मार्ग में बाधा आ रही है, ये मेरे आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहे हैं, इनको ये जो बात हो रही है मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकिन इनकी तरफ से ये, तो क्या होता है, ज्ञानी आत्माओं को क्षमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर के दुनिया वाले कुछ भी करेंगे, हम सहज रीति से अज्ञानी है कह करके अपने दिल में उसे स्थान नहीं देंगे, लेकिन जब ज्ञानी आत्मा के द्वारा कोई ऐसा कार्य होता है जिसे हम बाधक समझते हैं तो उसे क्षमा। लेकिन बाबा ने बताया है ये क्षमा की शक्ति ना, महान आत्माओं का यही लक्षण है, हमसे महान तो कोई संसार में होता नहीं है, इसीलिए ये क्षमा और ये विशालता हम अपने बुद्धि में धारण करते चले, आकाश में जैसे ये विशालता है, और ये विशालता अगर हमने धारण कर ली तो क्या होगा, जितना जितना ये विशालता हम धारण करते चलेंगे, सहज ही कोई आत्मा की ऐसी बात आई वो हमारे दिल में स्थान बनाएगी नहीं, वो चली जाएगी, सहज ही उस आत्मा के प्रति हमारा बस क्षमा भाव पैदा हो जाएगा। हम अभी से ही उसका अभ्यास करें, उन आत्माओं को भी एमर्ज करके संसार की हम क्षमा मांगते चलें और क्षमा देते चलें, तो क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी अगर, वो हमारे विनाश का कारण नहीं बन सकती। आकाश मार्ग से चाहे रॉकेट आए, बॉम्ब आए, क्लाउड बर्स्ट हो, बादल फटते हैं, बहुत उससे मृत्यु हो जाती है। आकाश को हमने मित्र बना लिया तो आकाश कभी भी हमारे उसका साधन नहीं, मृत्यु का साधन नहीं बन सकता। तो प्रकृति के इन तत्वों को ना हम अपना मित्र बनाते चले, अंत समय में ये हमें ऐसे सहायक होंगे कि बस बाबा ने कहा है यहां तक विनाश होगा, बिल्कुल आपके निकट तक आएगा बहुत भयंकर, लेकिन आप तक वो शांत हो जाएगा, वो कारण खत्म हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति पति हो। देखो मुझे याद आता है जानकी दादी का 31 दिसंबर 1999 की बात है। 31 दिसंबर को हमेशा अव्यक्त बाप दादा आते हैं, तो यहाँ पर बाप दादा आए हुए थे, नीचे की बात है शांतिवन की। और तो जब मुरली चला दी तो उसके बाद बाबा के पास दादी प्रकाशमणि और निर्वैर भाई बात कर रहे थे कि बाबा जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो लोटस में है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और लंदन से जयंती बहन वगैरह भी आ गई है और बहुत सीरियस है, डॉक्टरों ने कहा कुछ भी हो सकता है। और ये आज से करीब 20 वर्ष पहले की बात है। तो बाबा ने सुना और बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है। ये शब्द बाबा ने यूज करा। और देखो आज 20 साल हो गए, 103 साल ईयर की आयु भी, अभी वर्तमान समय लंदन है, इससे पहले स्पेन में थी, उससे पहले जर्मनी में थी, और वो कितनी सेवा कर रही है हमारे, आपसे तो कई गुना सेवा कर रही है। प्रकृति पति, तो ये ही प्रकृति पति हम रहे, ये प्रकृति है, हम आत्मा प्रकृति पति है। बाबा ने जैसे उन्हें बोला तो मैं और आप क्या नहीं बन सकते प्रकृति पति? तो इसीलिए इसको लेकर के जितना हम अपना प्रकृति जीत बनते जाएंगे, एक एक तत्व से अपना मैच करके हम विजयी बनते रहे, एक एक तत्व के गुण धारण करते चलेंगे तो हम प्रकृति पति बनेंगे। और फिर सफलता बाबा ने कहा आपके गले का हार। ओम शांति, ओम शांति।
का यही